अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हफ्ते की सीधी बात। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ट्वीट्स, मैसेजेस एंड योर टेक्स्ट। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम कि मेरी आपने बैठ के आराम से ये बकबक सुनी और जो मैंने ओंगी बोंगी बकवास लिखी थी वो आप लोगों ने पढ़ी उसके ऊपर। थैंक यू सो मच, जो फीडबैक आया है आई हाईली अप्रिशिएट दैट। और इस मौका पर मैं स्पेशली दाद देना चाहूँगा उन टीवी एंकर्स को जिन्होंने लिटरली पकड़ के मेरा पूरा का पूरा आर्टिकल उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके इस तरह बताया कि जिस तरह सारी की सारी ये जो अपना एनालिसिस था उनका अपना था। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसलिए क्योंकि जी इस लेवल की जर्नलिज्म जो है ना वो लेवल की है, फिर इनकी औकातें इसी तरह खुलती हैं। नाम नहीं मैंने लेना किसी का क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है, और मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये है कि बंदे की जो राइटिंग होती है वो पब्लिक डोमेन के लिए होती है, बट शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को कि कम अज़ कम यार अगर किसी के काम के ऊपर आप छापा मार रहे हो, ठीक है ना, और अपनी कोई मेहनत नहीं कर रहे हो तो कम अज़ कम यार लिहाज करो, थोड़ी सी शर्म करो, हया करो। जैसे ख्वाजा सा आसिफ कहते हैं ना, कोई शर्म होती है कोई हया होती है, बट देन अगेन जनाब ये बगैरत किस्म के लोग हैं। पहले भी कहता हूँ बगैरत हैं, अभी भी कहता हूँ ये ज़्यादातर बगैरत लोग हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है। किसी को शर्म तक नहीं आई कि एक दफ़ा बैठ के अगले बंदे को क्रेडिट दे जिस बात का वो बात करता है, ठीक है। चलो जी, दैट बीइंग पुट असाइड, इस हफ़्ते हम लोगों के पास माशाल्लाह डिस्कस करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लकीली जो मैं पिछले हफ्ते चीज़ डिले कर रहा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर बात करनी थी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे बात करनी थी, वो इस हफ़्ते बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर आ गई हैं चीज़ें। तो एक लिहाज से तो बड़ा अच्छा हुआ कि वो डिले कर दिया एक हफ़्ते के लिए, ताकि इस हफ़्ते तसल्ली से बैठ के डिस्कशन की जाए उसके ऊपर जनाबे वाला, बड़ा मज़ा आएगा। और आई गारंटी यू दिस इज़ अ डिस्कशन दैट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द बकबक दैट यू आर गोइंग टू लिसन ऑन टीवी और एनी अदर टाइप ऑफ मीडिया, क्योंकि मैं इसमें बोंगियाँ नहीं मारूंगा। मैं इसमें तीन चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ इस वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, एक तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा द आइडिया ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल एक्टिविज्म एंड वॉट इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी जनाबे वाला मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस सारी खिचड़ी के अंदर क्या पक रहा है, और उसके ऊपर जो है ना टुवर्ड्स द एंड आएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम जो डिसीजन माशाल्लाह आ जाया, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ये डिसीजन किसी अंधे को भी नज़र आ रहा था कि ये आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि जिस ट्रेजेक्ट्री पे हमारी कोर्ट्स ऑपरेट कर रही थी ना, उन्होंने एग्जैक्टली यही करना था। दे वुडंट हैव डन एनीथिंग एल्स एट ऑल। This was what they wanted to do. This is what everything was set up to be done. क्योंकि उसमें आप देखें, इसमें बड़ी सिंपल सी बात होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के डॉकेट के अंदर लगे जो केसेज हैं ना, हाई प्रोफाइल केसेज हैं, सिर्फ उनकी लिस्ट निकाल के देख लें और आपको पता चल जाएगा कि जो अपकमिंग डिसीजनस हैं वो किन किन केसेज पर आने लगी हैं। और वो सारे के सारे ऐसे केसेज हैं जो कि तकरीबन सारे के सारे पोलिटिकल नोयत के हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन आना था, नून लीग भी मेंटली प्रिपेयर्ड बैठी हुई थी कि ये डिसीजन आना है। उसके अलावा मैं आगे चलता जाऊँ, मैं आपको दो बातें और बताना पसंद करूँगा कि, और ये बातें मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कि जी आगे जाके मियाँ साहब को और स्पेसिफिकली मरियम के ऊपर कन्विक्शन के और केसेस बड़े लगे हुए हैं और वो कन्विक्शंस आएंगी। अगर आप बिल्कुल गधे भी हैं ना, तो आपको अब तक ये पता चल चुका होगा कि जनाबे वाला जिस लेवल की कन्विक्शंस आ रही हैं उन्होंने कन्विक्शन आनी ही आनी है। बट इस सारी बात के अंदर वो बात आप गौर से देख लीजिए जनाब, कि अभी तक कोई कन्विक्शन शहबाज शरीफ की नहीं आई, कोई कन्विक्शन हमजा शहबाज की नहीं आई। उनके खिलाफ भी केसेस लगे हुए हैं बट उन केसेस के अंदर वो एज़ इज़ टस से मस नहीं हो रही है, नथिंग इज़ हैपनिंग इन दोज केसेस। और जो एक केस के अंदर रिपोर्ट आई भी थी वो अपना मॉल्टन वाला केस था, उसके अंदर सीएम साहब बिल्कुल अपना खुशोखुरम तरीके से बाहर निकल गए थे, विच इज़ ग्रेट फॉर हिम, ठीक है। दिस इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज कि यहाँ पे किसी को नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये एक बड़ा टैक्टफुल और स्ट्रेटिजिक मेथड है जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। मियाँ साहब जब कहते हैं ना कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मियाँ साहब के साथ टेक्निकली एक लेवल पे वाकई ज्यादती हो रही है। ज्यादती इसलिए हो रही है कि मियाँ साहब को जिस टैक्ट से साइडलाइन किया जा रहा है ना, वो उनकी बात गलत नहीं है उसके अंदर। दैट इज़ ए होल डिफरेंट स्टोरी कि जी जो केसेस हैं उनके अंदर कन्विक्शंस बनती भी हैं या नहीं बनती हैं, और उनमें से बहुत ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट्स का डिसीजन कोई इतना भी गलत नहीं है, ठीक है ना। जो कोर्ट्स डिसीजंस ले रही हैं वो अपनी तरफ से गलती हैं। अब यानी फॉर इंस्टेंस जो डिसीजन आ जाए, ये डिसीजन लीगली स्पीकिंग इज़ परफेक्टली फाइन, इसके ऊपर लीगैलिटी में आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर सकते हैं। इससे जो पिछला डिसीजन था ना, जिसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन आया, क्योंकि देखें काम चलता है लीगैलिटी के अंदर, लीगल प्रेसिडेंट पे, और उसको आप स्ट्रक्चरली बिल्ड करते हो आर्ग्यूमेंट को। इस पूरे केस का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 62-63 शिक की बुनियाद के ऊपर नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं हैं और डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक जो बंदा नेशनल असेंबली से डिसक्वालीफाई हो चुका है, जो पार्लियामेंट से डिसक्वालीफाई हो चुका है, वो बंदे के पास किस किस्म का राइट है कि वो बाकी लोगों की टिकटों के ऊपर साइन करे या बाकी लेवल के ऊपर किसी पोलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करे जो पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। लीगली ये आर्ग्यूमेंट गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है ये आर्ग्यूमेंट। आप डिबेट कर सकते हैं वो जो 62-63 वाला अपना डिसीजन आया था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर डिबेटेबिलिटी बहुत ज्यादा। इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि जी वो वीक डिसीजन था, और वो डिसीजन वाकई बड़ा वीक था। इसके ऊपर कोर्ट्स बुरा मनाए, कोर्ट्स को पसंद आए, अ वीक डिसीजन is a weak decision. You can call it a decision regardless, but वो एक इंतहाई weak decision था। उसके ऊपर उधर से सांस मिला है नून लीग को, और ये बात कहना कि जी नून लीग ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया भी completely wrong है, but चलें जहाँ से बात शुरू हुई है पहले वहाँ पर आ जाएँ। जो ये जी डिसीजन आया ये बहुत डैमनिंग डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि इसका मसला ये है कि अब जो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर खच वजनी है ना वो काफ़ी शदीद वजनी है। लोग अभी पूछ रहे हैं जी ओहो हो तो उसका मतलब है कि जी मियां साहब ने जो टिकटें साइन की थी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अबे भाई उसका कोई मसला नहीं है। मियां साहब का यहां पे एक बड़ा मसला है, यहां पे मसला ये है कि नून लीग का प्रेसिडेंट अब कौन होगा या नून लीग को चलाने वाला बंदा कौन होगा। नून लीग को चलाने वाला बंदा मियां साहब होंगे, प्रेसिडेंट नून लीग का कोई और आ जाएगा। मेरा गट ये कहता है कि एटलीस्ट मियां साहब के पास जो नंबर वन ऑप्शन है वो ये है कि कुलसूम बीबी को वो अपना पार्टी का प्रेसिडेंट बना दें, और मियां साहब इज़ वेरी रिलक्टेंट टू गिव अप होल्ड ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंसी टू एनीबडी हु इज़ नॉट वेरी वेरी क्लोज टू हिम। तो उसमें कुलसूम बीबी इज़ नंबर वन, गिवन दैट मरियम हरसेल्फ हैज़ मल्टीपल केसेज अगेंस्ट हर एंड विल प्रॉबली गेट डिसक्वालीफाइड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स व्हाटसोएवर दे आर। उस केस के अंदर ये बनता है कि कुलसूम बीबी इज़ दी ओनली पर्सन दिस कैन बी हैंडेड ओवर टू। किसी का अगर ख्याल है कि ये अपना छोटे को देने लगे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या मियां साहब वो करेंगे या मियां साहब अपना फेवरेट काम करेंगे कि जहाँ पे जाके अपना बहुत पुराना लॉयलिस्ट कोई निकालेंगे जो इंतहाई कमज़ोर किस्म का बंदा हो और उसको पकड़ के पार्टी प्रेसिडेंसी दे दें ताकि वो बंदा मियां साहब के पूछे बगैर यानी हाथ ना उठा सके। और ये मियां साहब की एक पुरानी आदत है जो कि वो करते हैं। माशाल्लाह ममनून हुसैन साहब आपको भी याद होंगे कि हमारे अभी तक प्रेसिडेंट हैं, लोग दरमियान में भूल जाते हैं कि वो प्रेसिडेंट भी हैं, बट शायद उन्हें भी नहीं याद रहता। बट उसमें ये होता है कि वो प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी जो सिलेक्शन भी जो प्रोसेस था इतनी ऑप्शंस थी, बट उसके अंदर वो इसलिए चूज़ हुए क्योंकि मियां साहब वॉज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट कि इंतहाई डोसाइल किस्म का बंदा एक हार्मलेस किस्म का इंसान ला के लगाया जाए। सेम गोज़ फॉर द गवर्नर ऑफ पंजाब जिसका ज़्यादातर लोगों को नाम नहीं आता होगा, रजवाना साहब का भी। ये रीजनिंग जो है ना, ये मियां साहब की जो अप्रोच है, देर इज़ ए मेथड टू ऑल ऑफ दिस। ही इज़ नॉट जस्ट डूइंग थिंग्स, ही इज़ अ वेरी श्रूड एंड वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। लोग उनको एवं पोला पोला या बेवकूफ़ समझते हैं, नहीं, ही इज़ नॉट, ही इज़ वेरी 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 स्मार्ट। और उसके ऊपर अगर आपने मुझे ताने मारने या कोई बातें करनी है तो सौ बिस्मिल्लाह कहें जनाब, बट दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ और देर इज़ नो डिनाइंग दैट। वहाँ पे बात आ जाती है जनाब फिर दूसरे लेवल की प्रॉब्लम ये है कि पार्टी के अंदर जब ये क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है कि मियां साहब इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू रन अगेन एंड नथिंग दैट हैपन्स थ्रू द पार्लियामेंट इज़ गोइंग टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ, फिर उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ठीक है जनाब फिर मियां साहब सक्सेशन प्लान दें। अब मसला ये है कि मियां साहब इज़ नॉट फुली स्टिल बिहाइंड छोटा, छोटे के पीछे वो अभी तक 100% नहीं है। छोटा हैज़ बिन ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट वो छोटे के पीछे कन्विंस नहीं है। अब ये फॉर इंस्टेंस लोधरा वाली बात सुन लें आप। अच्छा जनाब, ओरिजिनली ये था कि कांजू और हमजा और बेस्ड ऑन छोटे मियां साहब इंसिस्टेंस ये अच्छा खासा पैसा लगा के वहाँ पे इंसानों वाला बहुत खुला बड़ा सा जलसा करने लगे थे जिसके अंदर छोटे साहब अपना छोटे मियां साहब ने आना था, उन्होंने आके तकरीर करनी थी और तकरीर करके उन्होंने लोगों को ये दिखाना था बुनियादी तौर पे कैमरे रोल करके कि देखो मेरी क्या स्टैंडिंग है कि मैं कल्ला खड़े होके इतने बंदे इकट्ठे कर सकता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, आप देखें लोग मेरे पे कितने आशिक हैं। अच्छा, एज ऑलवेज वो जो भाइयों के अंदर होता है, मियाँ साहब को बड़ी क्लियर हवा पड़ गई इस चीज़ की कि ये होने लगा है। मियाँ साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, उन्होंने पकड़ के छोटे को फ़ोन किया कि हाँ यार मैं लोधरा जा रहा हूँ, तू भी आ जा। अच्छा, हाथ पांव नहीं फूल गए सबके जो ये अपना तीनों बैठ के वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे। जल्दी के अंदर दो दिन के नोटिस के ऊपर इन लोगों ने बंदे इकट्ठे किए जितने कर सकते थे, क्योंकि देखें जलसा जो है दो दिन के नोटिस पे नहीं होता, जस्ट जलसे के लिए 10-15 दिन चाहिए होते हैं मिनिमम। अगर आपने ढंग का जलसा करना है ना, 50-60 हज़ार बंदा इकट्ठा करना है, कम से कम हफ्ता दो हफ्ते चाहिए होते हैं, पूरा स्केड्यूल आता है उसकी बेस के ऊपर चीज़ें चलती हैं, पैसे अच्छा खासा पैसा लगता है यार, मजाक नहीं है। तो ये लोधरा के अंदर एक जलसी जुलसी की गई, उसको जलसी कहना है, जलसी कह लें, बंदे इकट्ठे करना, बंदे इकट्ठे करने कहना, जो भी आपकी मर्जी है, आप कहना चाहते हैं सौ बिस्मिल्लाह कहें, बट वो करके मियाँ साहब ने हाथ पकड़ के हिलाया और बताया कि हाँ जी देखें, बेसिकली मियाँ साहब ने कहा कि ये भी क्रेडिट मेरा है। छोटा इज़ ट्राइंग टू एंगल फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप एंड ही इज़ वेरी कन्विंस ही कैन गो अहेड एंड डू दैट। मसला ये है कि मियाँ साहब उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं, और मियाँ साहब इज़ गोइंग टू होल्ड हिम हॉस्टेज ऑन दिस टिल दी वेरी लास्ट डे, टिल मियाँ साहब, मैंने पहले भी कहा है, टिल मियाँ साहब हैज़ क्लियर आइडिया कि पंजाब के अंदर उन्होंने किसको अपॉइंट करना है। और उसके अंदर भी माशाल्लाह हमारी किस्मत पंजाब के अंदर ख़राब होने लगी है कि या तो ख्वाजा आसिफ होंगे या ख्वाजा साद होंगे, जो कि मियाँ साहब के पर्सनल फेवरेट्स हैं। उसके अंदर उन दोनों में से किसी एक को वो लगाने की कोशिश करेंगे, अगर वो दोनों ना चले तो फिर देर अदर ऑप्शंस जो कि ज़्यादा अननोन है, बट दीज आर द पीपल ही इज़ लुकिंग एट राइट नाउ, उनमें से किसी एक को लगाने की अगर वहाँ पे कोशिश करेंगे, बट ही नीड्स गारंटीज राइट नाउ फ्रॉम हिज लॉयलिस्ट, और छोटे से भी ही हैज़ टू गेट गारंटीज कि वो कितना सपोर्टिव है। अगर मरियम समहाउ सर्वाइव्स ऑल ऑफ दीज कन्विक्शंस, विच इज़ हाईली अनलाइकली, तो शी वुड बी दी प्राइम कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन, बट हमजा को कुछ नहीं जाने लगा। अब उसके अंदर दूसरा इशू ये है कि जनाबे वाला दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, इन दोनों में से किसी ने हमजा की नहीं सुननी, ना ख्वाजा साद ने सुननी है ना ख्वाजा आसिफ ने सुननी है। हमजा इज़ गोइंग टू बेसिकली देन हैव टू मनूवर हिमसेल्फ इन टू अ डिफरेंट पोजिशन, और वहाँ पर जो पार्टी के अंदर टेंशन और जरा स्ट्रेस आएगी ना, वो उस पॉइंट पर आएगी, अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी नैरेटिव भी चल रहा है और वो नैरेटिव बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखें उसमें लोग कहते हैं जी ये हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन भी कर रहे हैं, जनाबे वाला अपोजिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने सक्सेसफुली बैठ के कोर्ट्स को हुकूमत बना दिया, दे आर रिज्यूमिंग, और लोगों के दिमागों में ये डाला है कि जी कोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही हैं और हम बेचारों के साथ ज्यादती हो रही है और हम लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं और हम लोग हक का साथ दे रहे हैं और मेरे वोट के साथ ज्यादती हो रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो नैरेटिव जो है ना नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है और बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, और उसके अंदर वो एक सिंपथी वोट जो है ना कि मियाँ के साथ ज्यादती हुई है, वो आपको पड़े ही पड़े जनाब, उसके ऊपर तो देर इज़ नो आर्ग्यूमेंट, वो वोट पड़े पड़े। मसला सिर्फ इतना सा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हरकतें शुरू की हुई हैं ना, द प्रॉब्लम इज़ कि कोर्ट अपना लॉन्ग टर्म जो स्टैचर है ना वो ख़राब कर रही है इस वक्त। कोर्ट का काम है कि वो माशाल्लाह जो हज़ारों केसेस डॉकेट के अंदर पहले लगे हुए हैं ना, उनके ऊपर फैसले दे, बजाय कि पॉलिटिकली ये पींगे बढ़ाने की जो चक्कर में लगे हुए हैं ना, कोर्ट कैन ऑलवेज डू दैट लेटर, बट कोर्ट की अपनी जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट होना चाहिए वो इस लिहाज पे होना चाहिए कि देखो यार हमारे पास केसेस लगे हुए हैं डॉकेट के अंदर, इनको फड़काओ, फिर आगे चल के हम लोग जो दरमियान में कोई पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस आ गया तो वील हैव अ लुक एट इट। ये मजाक बनाया हुआ है इस वक्त जो तरीके से चल रहा है। उससे बात शुरू करते हैं जनाब, जिसमें मैं आना चाह रहा था, जुडिशियल एक्टिविज्म पे और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर मैं ज़रा थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल साइंस भी समझा दूं, क्योंकि ये दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर मैंने एक्चुअली बैठ के अपने को-ऑथर के साथ काम किया है, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो होती है ना, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जुडिशरी के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है और जुडिशरी खुल के फैसले कर सकती है, वो जिस भी किस्म के फैसले करना चाहे, चाहे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चाहे हुकूमत के हक में हो, जब तक जुडिशरी के ऊपर किसी किस्म का कोई बायस ना हो और जुडिशरी को किसी तरीके से कंस्ट्रेन ना किया जाए कि आपने फैसले सिर्फ इस तरह के करने हैं, तो वो केसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज़ वॉट वी कॉल जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जो बुनियाद है वो बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली पड़ी होती है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि जी जुडिशरी के पास ये हक हासिल है कि ए वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, बी उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करे, एंड सी जुडिशरी अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के किसी किस्म के फैसले जो भी देने हैं बेस्ड ऑन केस का अपना मेरिट दे सके। ये है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। उसमें आती है जुडिशियल एक्टिविज्म। जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बुनियाद पे जुडिशियल एक्टिविज्म आती है, जब जुडिशरी एक्टिवली सो मोटो एक्शन लेती है या जुडिशरी एक्टिवली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है या हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, तो वो होता है एक्टिविज्म। जुडिशरी को वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट जुडिशरी क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो जुडिशरी इज चूजिंग टू टेक अप एन एक्टिविस्ट रोल इन दिस प्रोसेस ऑन सर्टन पॉलिसी इश्यूज, जिसके ऊपर जुडिशरी को यह लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रही। ये लॉजिक है इस चीज़ की। ये ऐसे हवाई आइडियाज़ नहीं हैं जनाब, दीज आर वेरी कॉन्क्रीट आइडियाज़। इनके ऊपर पिछले 40 साल में इतना लिटरेचर लिखा हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, बट ये कॉन्क्रीट आइडियाज़ हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जो पेपर जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और जो मैंने अपने को-ऑथर के साथ लिखा था, उसके ऊपर हमारा आर्ग्यूमेंट जो था, और उस टाइम पे भी लोगों ने हमें बड़ा क्वेश्चन किया था कि आप ये किस तरह आर्ग्यूमेंट बना रहे हो। मैं तब भी ये कह रहा था, ये 2014 की बात है, लोग तब कह रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी नहीं हो रहा है, आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि जी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो स्ट्रेंथन होती है डेमोक्रेसी के अंदर, बट जुडिशियल एक्टिविज़म जो है ना वो भी स्पाइकअप करता है डेमोक्रेसी के अंदर। जुडिशियल एक्टिविज़म जो है वो तब एक्टिवेट होता है जब जुडिशरी के अंदर एक ऐसा बंदा आता है जो कि इसको एक्टिवेट करना चाहे। जिसका मकसद क्या जनाब, लॉजिक ये हम दे रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म तब तक नहीं हो सकता जब तक जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जब आती है तो उसके बाद बेस्ड ऑन द चीफ जस्टिसेस पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी ड्रिवन ट्रेट होता है नॉर्मली, बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चीफ जस्टिस, फिर जुडिशियल एक्टिविज़म जो है ना वो उसके अंदर आप अपटेक देखते हो और आप देखते हो कि वो बढ़ रही है। और जुडिशियल एक्टिविज़म पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर हमेशा स्टार्ट होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मकसद है जनाब? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब यह है कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हो। जिस तरह आपको याद होगा इफ्तिखार साहब चौधरी इफ्तिखार जब अपना चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने लाहौर के अंदर बिल्डिंग्स गिरानी शुरू कर दी थी। बेसिकली चीनी की कीमत पर वो पहुँच चुके थे, फिर उसके बाद उन्होंने दूध की कीमतें फाइनल करनी शुरू कर दी थी। दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि द आर्ग्यूमेंट द कोर्ट गिव्स इज कि जी हम लोग सुओ मोटो एक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसको लिटिगेट करना है। तो इस कोर्ट ने जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू की थी उसमें से एक केस ये था कि जनाबे वाला हमें यहाँ पे जो अफसरों को बुला लेते हैं कि जी हमें समझाएं कि इस्लामाबाद के अंदर एंट्रेंस पे फैज़ाबाद अड्डे के ऊपर कब्ज़ा क्यों हुआ हुआ है, दैट इज़ ए पब्लिक न्यूसेंस और उस लिहाज से दैट बिकम्स पब्लिक लिटिगेशन। उसका तरीकाकार ये होता है कि बिकॉज इट्स अ पर्सनैलिटी ड्रिवन ट्रेट, जुडिशियल एक्टिविज्म रिलाइज ऑन लेजिटिमेसी दैट दे गेन थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और जब वो लेजिटिमेसी एक लेवल तक पहुंच जाती है एंड देन दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिकल मैटर्स। फिर हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस भी आ जाते हैं, फिर उसके अंदर एक पॉलिटिकल डिस्कशन भी शुरू हो जाती है कि व्हाट कैन सर्वाइव एंड व्हाट कैन नॉट सर्वाइव, किन चीज़ों के ऊपर काम होने की ज़रूरत है, किस तरह कोई चीज़ होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी डिस्कशन खुल जाती है, और जो कि हम लोग इस वक्त देख रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। तो ये पूरी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि पहले तो ये समझाया जाए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है। दूसरी बात यह कि जी जो हमारे इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं, अगर आपको याद हो हमारे जो पिछले दो चीफ जस्टिसेस गुजरे हैं इफ्तिखार साहब के बाद से, उन दोनों में किसी किस्म की इतनी शदीद स्ट्रीक नहीं थी जुडिशियल एक्टिविज़म की। ये तो माशाल्लाह अब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं इनके अंदर जो है वो एक साकिब निसार साहब के अंदर एक एक्टिविस्ट जज होने की ट्रेट है जो कि वो यूज़ कर रहे हैं, जितना खुला यूज़ कर सकते हैं वो उसको यूज़ करी जा रहे हैं। हर लेफ्ट राइट सेंटर फ्रंट बैक जहाँ पर टाइम मिलता है वो कर लेते हैं उसको यूज़, विच is under his domain given that courts are completely independent in Pakistan at this stage. Judicial independence ke upar there is no argument. Pakistan is a judicially independent country at this stage. Ye main bar bar kehta hu at this stage kyunki it goes up and down. Masla janabe wala ye hai ki court operate karti hai legitimacy ke upar. Jab aap इंतहाई पॉलिटिकल फैसले देने शुरू कर देते हैं और इंतहाई डैमेजिंग फैसले देने शुरू कर देते हैं जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन को स्ट्रेच आउट करना शुरू कर देते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो बंदा चला जाता है जिसने चीफ जस्टिस होना होता है, क्योंकि इट्स अ पर्सनैलिटी गिवन ट्रेट, जो उसका डैमेज होता है ना वो कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर आता है। आप देखिएगा कि जब माशाल्लाह साकिब निसार साहब रिटायर होंगे ना तो उसके बाद अगले 2 से 3 सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिसेज होंगे ना वो इंतहाई खामोश किस्म के चीफ जस्टिसेज आएंगे, जो कि ज़्यादा शोर भी नहीं डालेंगे, जो कि ज़्यादा सोमोटो एक्शन भी नहीं लेंगे, जो कि ज़्यादा रौला भी नहीं डालेंगे, एंड दे विल लेट डेमोक्रेसी, आइडियली तब तक डेमोक्रेसी हो सही, दे विल लेट डेमोक्रेसी वर्क। क्योंकि ये दिस इज़ अ ट्रेंड, इट गोज़ बैक एंड फोर्थ, ये ऊपर नीचे आता जाता है. इसके अंदर सबसे क्रिटिकल बात हमें देखने की ये है, और ये भी हमारी कोर्ट्स को भी ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जनाब शॉर्ट रन के अंदर तो आप माशाल्लाह अपनी तरफ से कह रहे हैं कि देखें हम लोग कितनी बेहतरी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना कोर्ट्स के ऊपर, एक तो आप वो इरोड कर रहे हैं, दूसरा आप डेमोक्रेसी को किसी हद तक हिंडर करने की कोशिश करें, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग डेमोक्रेसी. अब ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगें, सौ बिस्मिल्लाह लगें जनाब, मैं सिर्फ इस वक्त प्योरली टेक्निकलिटीज़ की बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ. और अगर आपको बुरा लगता है पाकिस्तान के बारे में मेरी बात करना, मैं आप लोगों को दो और केसेस सुना देता हूँ. चिले के अंदर ये केसेस हैं थ्रू आउट द 1980s and 1990s, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में केस हैं विद इन द लास्ट 5 to 6 years, जहाँ पर जेकब जुमा ने बैठ के अभी तो फारिग कर दिया उनको, बट बिफोर जेकब जुमा बिटवीन 2014, 2015 एंड टिल 2016 ही वॉज सिस्टमैटिकली डिसमेंटलिंग द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कोर्ट इनके खिलाफ डिसीजंस लेने शुरू हो गया था. तो उन्होंने फैसला किया कि ऐसी की तैसी कोर्ट की, आई विल स्टार्ट टेकिंग इट अपार्ट. उसका ये नेट रिजल्ट निकला है कि अब वो तो रिमूव हो गए हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बट उसके अंदर जो जो जुडिशल सिस्टम है साउथ अफ्रीकन और जो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसका वो स्टैचर भी ख़राब हो गया, उसकी लिजिटमेसी भी ख़राब हो गई, क्योंकि वो इतने बुरे तरीके से पोलिटिसाइज हो गई है. तो इंस्टीट्यूशनली कोर्ट्स हैव टू डिसाइड कि उन लोगों ने किस किस्म का हिट लेना है. ये कहना कि वो कोई काम इलीगल कर रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है, वो अपने हक हदूद के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट, उसके मुताबिक काम कर रहे हैं. तो एक तो ये बात जी, मैं आई वॉन्टेड टू गो इन टू डीपर डिटेल्स ऑफ दिस ताकि ये एक दफ़ा क्लैरिटी आ जाए. तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा था सारे चक्कर के अंदर, तीसरी बात जनाबे वाला ये है कि इन सारे डिसीजंस के बाद ये जो खिचड़ी पक रही है ना, दिस इज़ अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड खिचड़ी, और वो खिचड़ी ये है कि मियां साहब इज़ गेयरिंग अप फॉर इलेक्शन, एवरीबडी एल्स इज़ गेयरिंग अप फॉर इलेक्शन. इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है इसेंशली कि अगला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बनना है तो पंजाब का कंट्रोल किसके पास जाएगा, वन टू सेनेट के अंदर क्या सिचुएशन बनती है. एट दिस स्टेज मेरा अपना पर्सनल फीलिंग ये है कि सेनेट के अंदर नून लीग सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर होगी, बट नून लीग मेजॉरिटी के अंदर यानी पावर में आने वाली पोजीशन में नहीं होगी. क्या मतलब है उसका, चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग के लिए कंटेस्ट करना या अपनी जेब में डाल लेना इज़ गोइंग टू बी मच हार्डर, और विच इज़ प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ये सेनेट 6 साल चलती है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर नून लीग. विद रिगार्ड्स टू जनरल इलेक्शन के ऊपर जो अपना होना है सब कुछ, उसमें यह है कि नून लीग इज़ इन अ मच मच बेटर पोजिशन दैन पीपल रियलाइज. अगर खुदा न खास्ता कोर्ट्स एक्चुअली गो टू दैट पॉइंट कि जहाँ पर मियाँ साहब को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, खुदा की कसम ये इससे उसका ब्लो बैक ये आएगा जनाबे वाला कि नून लीग फिर अच्छी खासी मेजॉरिटी लेके आ जाएगी. इस वक्त नून लीग 80-90 सीटों पे बैठी हुई है जनरल इलेक्शन के अंदर. अगर आप मियां साहब को हथकड़ी लगाते हैं ना, और खुदारा मरियम को आप लोग हथकड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि आई एम फुली एक्सपेक्टिंग के देर इज़ ए वेरी हाई चांस ऑफ दैट हैपनिंग, उसके जो विजुअल्स हैं ना वो इतने पावरफुल होंगे, क्योंकि ये हुकूमत में भी हैं, ये बात याद रखें. सो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये आएगा कि देखिए जनाब, हम लोग तो आइन की इतनी बालादस्ती पे यकीन रखते हैं जनाब कि हम लोगों की हकूमत है, और हकूमत होते हुए भी हम लोगों ने हथकड़ियाँ लगवाई हैं, इससे ज़्यादा इंसाफ की आप क्या बात कर सकते हैं जनाब. हम लोग तो इतना बिलीव करते हैं कोर्ट्स के ऊपर और इतना बिलीव करते हैं आइन के ऊपर. वो वाली जो बात है ना, और उसके जो विजुअल्स हैं, सब छोड़ दें जनाब विजुअल्स, वो विजुअल्स इतना रेजोनेट करेंगे ना बेस के साथ और जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कंजर्वेटिव इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ, उस मामले में जब आप नून लीग के साथ इलेक्शन लड़ने जाएंगे ना एज दी ऑपोजिशन, तो लग पता जाएगा फिर इसको. एंड सेकेंडली वही बात जो मैं पिछले हफ्ते भी की थी, तंजीम भी कोई चीज़ होती है जनाब. नून लीग की तंजीम के अंदर इतनी जान पहले कभी हो ना हो इस दफ़ा आ गई है, प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि दिस इज़ दी परफेक्ट कंडीशन. अगर तंजीम ने इकट्ठे हो के डोमिनेट करने की बारी आएगी ना, तो इलेक्शन की डेट आप आ लेने दें, फिर देखें ये क्या करते हैं. तो इस दफ़ा उनको बदमाश कहना, करप्ट कहना, ब्लानी टम, भाई नून लीग वाले जो वोटर है ना, वो पिछले 12 साल से ये स्टोरी सुन रहा है. वो उस वोटर के ऊपर वो टस से मस नहीं होता. वो इस बात पे ज़रूर टस से मस हो जाएगा जब वो देखेगा कि मियाँ साहब को हथकड़ी लग रही है और मरियम को हथकड़ी लग रही है. आप लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जो कि वो वोटर है ना, उसके दिमाग में क्या गुजरता है. उस वोटर ने कहा ना जी 100 बिस्मिल्ला ऐसी की तैसी, हमने सिस्टमेटिकली देख लिया, जब ये बंदा मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश करता है लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। देखें जनाब अमरीका को इसने नो कहा ना, आप देखें जनाब, हालांकि नहीं कभी कहा, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, अमरीका को नो पाकिस्तान में से लिटरली कोई नहीं कहता, बट देखा जी जनाब आप मियाँ साहब ने कहा ना, फिर हुकूमत ने आगे से डंडा दिया, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने चीन के साथ मिलने की कोशिश की, जनाब देखा साजिशें यही होती हैं, इसी तरह साजिशें होती हैं जनाब, देखा मियाँ को खुडे लाइन लगा दिया, ये नैरेटिव है, और ये नैरेटिव आपको गली मोहल्ले के अंदर जाके एंड पे लगना है वोटर को, और वोटर ने कहना जी मियाँ को वोट डालना है, उसके ऊपर आप डाल लें तंजीम जिसकी लोकल पॉलिटिक्स की एबिलिटी बहुत बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर है तहरीक इंसाफ की या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों की ग्राउंड लेवल ऑपरेशन से, एटलीस्ट इन पंजाब। ये हम लोग खिचड़ी पकती देख रहे हैं। जो गंद शुरू होना है ना, वो शुरू होना है जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, जब डिसीजंस आने हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर किसने बनना है पंजाब का, उसके ऊपर गंद शुरू होगा। वो जो लोग बातें कर रहे हैं ना जी पार्टी स्प्लिट, जनाब पार्टी स्प्लिट आए ही आए नून लीग में, उसकी नौयत बड़ी डिफरेंट होगी, उस इट वॉन्ट बी ए पार्टी स्प्लिट लाइक जो कि तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ में ग्राउंड लेवल के ऊपर पार्टी स्प्लिट है, ऑपरेशनल पार्टी स्प्लिट है, नून लीग के अंदर अपर लीडरशिप के अंदर पार्टी स्प्लिट है, और वो इतना आउट इन दी ओपन भी नहीं है क्योंकि कोई किसी के खिलाफ बातें भी नहीं करता, कोशिश करते हैं नीचे नीचे से कराने की या बातें फ्लोट करते हैं, बट वो नहीं होता। तो हम लोग इस सिनेरियो में बैठे हैं इस वक्त, एंड आई वॉन्टेड टू लेट आउट देर, ताकि मैंने पहले भी बातें कही हुई हैं उसके ऊपर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग हमेशा मुझे कहते हैं हो ही नहीं सकता, फिर दो हफ्ते बाद कहते हैं अच्छा ठीक है आपने बिल्कुल सही कहा था। एंड अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि दिस इज़ नॉट रियली रॉकेट साइंस, दिस इज़ पोलिटिकल साइंस। पोलिटिकल साइंस में पाकिस्तान इज़ वन केस, दुनिया के अंदर 200 मुल्क हैं, हमारे पास 200 केसेज हैं, मल्टीप्लाई दैट बाई दी हिस्ट्री ऑफ दोज कंट्रीज, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेज हैं। पाकिस्तान से जो सिमिलर केसेस हैं उनके अंदर जब भी ऐसे ऐसे हुआ है उधर, अगले स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी तरीके से हुए हैं। तो इसमें ना मैं कोई बहुत बड़ा बहादुर हूँ जो कि स्वीपिंग किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहा है, नहीं, आई एम टेकिंग वेरी वेरी एजुकेटेड लाइन्स इन दीज थिंग्स, जो कि मेरा काम है, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके ऊपर अगेन अगर आपको किसी बात से डिसएग्रीमेंट है प्लीज़ मुझे बताएं भाई, इंगेज करें मेरे साथ इस बात के ऊपर, आई लाइक लिसनिंग टू डिफरेंट ओपिनियंस। मैं जेन्युइनली लोग समझते हैं मैं ऐसे ही यानी चवलपने के अंदर कह रहा हूँ हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं नहीं, मैं आई जेन्युइनली वॉन्ट टू हेयर योर ओपिनियन। उसमें मेरा ये फ़ायदा होता है कि एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट आई लर्न अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, क्योंकि मेरे पास परस्पेक्टिव डिफरेंट किस्मों का है, और उसमें फिर मेरा अपना परस्पेक्टिव है, और मैं इस कोई अक्लमंदाना बात तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं कम से कम बाकी लोगों की बात ना सुन लूँ। तो प्लीज़ जनाब आप ट्वीट करें, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो आपका दिल आता करें, बट लेट मी नो, प्लीज़ टॉक टू मी एंड प्लीज़ इंगेज मी ऑन दीज थिंग्स, कि अगर आपको लगे कि मैं किसी बात पर गलत हूँ या किसी बात पर सही हूँ, तो 100 बिस्मिल्ला प्लीज़, आई एम ओपन फॉर दैट डिस्कशन। इस हफ्ते की पॉडकास्ट काफ़ी लंबी हो गई है, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन iTunes और यू कैन सब्सक्राइब ऑन Podomatic एज वेल, एंड आई होप टू हैव अ न्यू पॉडकास्ट अप समटाइम नेक्स्ट वीक। आई विल ट्राई टू डू इट विद माई डैड, एक्चुअली ही इज फाइनली इन द सेम कंट्री एज आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, तो वट विल ट्राई टू डू इज विल डू वन टुगेदर, और उसमें यह है कि मेरे वालिद साहब लिखते हैं एक्सप्रेस के लिए, और वो लिखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे ज़्यादातर, तो आप प्लीज़ उनका भी कॉलम पढ़ा करें, बड़ा अच्छा लिखती हैं, और उर्दू उनकी हज़ार दर्जे बेहतर है मेजॉरिटी हम में से, तो प्लीज़ उनका नाम है खालिद महमूद रसूल, उस नाम से लिखते हैं, तो प्लीज़ आप उनका भी एक्सप्रेस में पढ़ा करें। और जनाबे वाला जो फीडबैक है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप बात करना मेरे से पसंद करेंगे या मेरी बकबक सुनना पसंद करेंगे, प्लीज़ डू लेट मी नो। और तीन या चार इश्यूज़ थे उसके ऊपर मुझे लोगों ने कहा भी, मेरे से डिस्कशंस भी हुई थी, बट उसके ऊपर आई एम रिलक्टेंट टू राइट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। एक MQM का मामला था, सच्ची बात है उस पर उसके बारे में मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑल्दो आई हैव बीन ऑफर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मुझे यकीन नहीं आता उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि वो ये भी हो सकती है, बट वो फिर से देखेंगे। प्लस आई एम ओपन टू एनी सजेशंस जनाब, सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आर्टिकल शुड बी कमिंग अप इन अ कपल ऑफ डेज, एंड थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, एंड प्लीज़ दो शो ज़रूर देखा करें, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, एक नुसरत जावेद को प्लीज़ सुना करें, वो बड़े प्यारे इंसान हैं, और दूसरा ज़रा हटके जो शो है वो प्लीज़ ज़रूर देखा करें, उसमें एक तो नंबर वन मेरा दोस्त ज़रा आ रहा है, और दूसरे वसतुल्ला शाह साहब भी हैं और जैदी साहब भी हैं, और बड़े अच्छे, तीनों बड़ी अच्छी बात करते हैं, खरी बात करते हैं. तो प्लीज़ गिव इट अ लिसन. पॉडकास्ट अगर आपने एक और सुननी होती है और आपके पास टाइम है और ज़रा थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन सुननी होती है तो नदीमुल हक साहब की पॉडकास्ट है सोच विचार के नाम से, प्लीज़ वो सुने. ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, ही नोज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही एक्चुअली इज़ ए प्रॉपर एकेडेमिक. सो प्लीज़ गो अहेड एंड लिसन टू दैट. थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़.